ओम शांति। आज परमपिता परमात्मा की आप प्रिय संतान, आप बहुत सभी बहुत बहुत भाग्यशाली हो जो ईश्वर के निमंत्रण पर आप आज इस संस्था में हमारे प्यारे ज्ञान सरोवर में आप यहाँ आए। हम आपका बहुत बहुत दिल से स्वागत करते हैं इस सत्र में। बहुत बहुत स्वागत स्वागत स्वागत। आज का ये जो वर्कशॉप है, इस वर्कशॉप में है परिवार की क्या समस्या और उस समस्या का समाधान, सबसे बड़ा टॉपिक है। क्योंकि आज दुनिया के अंदर परिवार में समस्याएं, व्यक्तिगत, हमारी हर एक की व्यक्तिगत समस्याएं, पारिवारिक समस्याएं, व्यक्तिगत समस्याएं, सामाजिक समस्याएं और राजनीतिक में समस्याएं, धार्मिक में समस्याएं। आप जिस भी जगह जाओगे आपको सिर्फ क्या दिखाई देगा, समस्या समस्या समस्या। तो आज हम इतने सुंदर समय की वेला में, हाँ बैठिए बहन जी, तो आज की ये जो सारी समस्या है, हम सभी मिलकर के आज की ये सारे दुनिया की जो समस्याएं, इनको हम समस्याओं को ईश्वर के याद से, ईश्वर की प्रेरणा से सभी समस्याओं को समोसा बना देंगे। क्या बनाएंगे? पक्का? जरा हाथ उठाइए जो बनाएंगे समोसा। आप समोसा का नाम लेते ही आपके मुंह में क्या आ जाता है? पानी आ जाता है ना? और समोसा तो जैसे सामने आता है तो हम क्या करते हैं, खा लेते हैं, उसको तकलीफ होता ही नहीं, एकदम खा लेते हैं। तो समस्याओं को हमारे दादी जो थे, प्रकाशमणि दादी, वो हमेशा कहते थे समस्याओं को समोसा बना दीजिए। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे? तो हम देखेंगे जो जो हमारे जीवन के अंदर समस्याएं आती है, सुबह से लेकर रात तक समस्याओं के पहाड़ी पहाड़ है। मानो तो समस्या है, ना मानो तो खेल है। समस्या ये क्या है? एक्चुअली खेल है। खेल को आप खेलने जाते हैं तो बॉल आपके पास, कोई सिक्सर मारेगा तो आपको क्या करना है, बॉल को पकड़ना है, कैच करना है ना? और उसी तरह से जैसे आप मैच देखते हो तो आप सिक्सर मारो, फोर निकालो, सिक्स निकालो, तो उसी तरह से जीवन भी एक खेल है। जीवन ही एक क्या है? खेल है। और इस खेल को हम एंजॉय करेंगे, क्योंकि जब तक समस्याएं यानी पेपर परीक्षाएं, ये जब तक पेपर नहीं आता तब तक आप आगे के क्लास में ट्रांसफर नहीं होते। आप लिखते जाना, देना है हमको, आप दोनों भी लिखते जाना कुछ। तो समस्याएं जो है ये क्या है? खेल है। और खेल में हम खेलते जाएंगे और उसका एंजॉय करेंगे। हमें ये देखना है कि हमें ये परीक्षा जो मेरे जीवन में आई है, इसको देखने का मेरा नजरिया क्या है। जीवन के अंदर जो जो मेरे पास समस्या आई, उसको देखने का नजरिया क्या है। समस्याएं किसको नहीं आती है? छोटा बच्चा भी है ना, वो केजी के स्कूल में जाएगा, उसको आप कुछ काम बताएंगे ना तो बताएगा, मम्मा मुझे कुछ नहीं बताओ, आज मुझे बहुत टेंशन है, बहुत पढ़ाई का होमवर्क है ना? तो बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको परीक्षाएं तो आती है। लेकिन आप अपने सुबह सुबह अपने माइंड में, कंप्यूटर ये माइंड है हमारा, उस माइंड में ये पक्का कर दीजिए कि आज दिन भर में जो समस्या आएगी मैं उसको खेल की दृष्टि से देखूंगी और ईश्वर के साथ रह के उसकी पावर से उसकी पावर को खत्म कर दूंगी। और हमेशा मेरा एक्सपीरियंस है कि जिस बात को आप बहुत महत्व देते हैं ना, वो उतना ही बड़ी चीज हो जाती है, है ना। और जिस बात को आप महत्व ही नहीं दो तो बड़ी बात भी क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। तो हमेशा ये जीवन में देखो कि आपके आगे ये जो समस्या है आप इसको बहुत उसका वर्णन नहीं करो। पहला तो हम 10 लोगों के आगे उसका वर्णन जब करते हैं ना समस्या का, तब वो क्या बन जाता है, पहाड़ बन जाता है। 10 लोगों के आगे बताएंगे, और महिलाओं में तो ये बड़ी विशेषता है। क्या विशेषता है हमारी, हम जब तक मन खाली नहीं करते हैं तब तक रुकता नहीं। लेकिन अगर आपको खाली करना है ना, तो आपका मंदिर है घर में, प्रभु का घर है, या कहीं भी आप बैठे हैं वही मंदिर समझ लो, और वो ईश्वर से बता दो, वो परमात्मा आपका सच्चा साथी है, परमात्मा आपका एक जीवलग मित्र है, आपका प्रिय मित्र है, परमात्मा आपका सखा है, परमात्मा आपके साथ 24 घंटा है, 24 घंटा आपके साथ है। उसको आप दिल की बात बता दें, जो भी समस्या है, ये पहला बात कर लो नोट, कि जो भी समस्या आएगी वो ईश्वर को मुझे बतानी है। पहला हम किसको बताते हैं, जो हमारा प्रिय है या जिससे जो हमारी बातें सुनता है उसको हम सुनता, चाहे वो पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे भाई हो, बहन हो, दोस्त हो, जिसको। लेकिन उसको भी सुनाने के पहले किसको सुनाइएगा, आज से ईश्वर को सुनाइए। और उसके बाद आपको जो समस्या आई है ना, वो ईश्वर के पास रख के उनका निवारण करने के लिए हमारे पास, आप सब, आप में से बहन जी थोड़ा छोटू को पीछे लेके जाएंगे, वो बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, पीछे लेके जाए, पीछे की कुर्सी पर आप बैठ सकते हैं, वो चारों लोगों को हो रहा है। तो जो समस्या आती है तो वो समस्याओं को समाधान हम लोगों को कैसे मिलता है, हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी संस्था में जाते हैं। आप में से कौन कौन जाते, थोड़ा हाथ उठाएंगे, जो संलग्न है या कभी कभी जाते हैं, बहुत अच्छा है, लंबा हाथ उठाइए, देखो कितना अच्छा है। तो मैं ये पहला सजेशन दूंगी कि आप हमारे सेवा केंद्र पर जाइए, वहां पर सुबह की मुरली होती है, शाम को भी होती है, तो वो मुरली जो है या ईश्वर के महावाक्य जो है उसमें आपका हर प्रश्न का आंसर आपको मिलता है। ये आप सभी को अनुभव है, किसी को आप में से, किसको अनुभव है, जो भी आपका प्रश्न है वो ईश्वर के महावाक्यों में आपको मिल जाता है, तो आपको आंसर मिल जाता है। दूसरी बात, ये बहुत सीखने की बात है, कि जो भी समस्या आई है उस समस्या का कारण या कोई व्यक्ति को आप नहीं दोष देना कि इस व्यक्ति के कारण ये समस्या आई है, इस फलाने के कारण ये समस्या आई है, या ये प्रकृति के कारण ये समस्या आई है। आप ये किसी को भी दोष न देके इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सिखाया जाता स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, स्व परिवर्तन से, सभी बोलिए मेरे साथ, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो आपकी समस्या यू ही खत्म, आपको जो समस्या आई तो आप ये प्रश्न पूछिए, इसमें मुझे क्या चेंज करना है, मुझे कहाँ चेंज होना है, मुझे कहाँ बदलना है, और दूसरा ये पूछिए मेरी क्या गलती है, कहाँ न कहाँ जो भी समस्या आती है उसमें मेरा कुछ तो कसूर है। आप निर्दोष नहीं है, 10% तो भी हमारा है, होता है या नहीं होता है, आपसे दिल से लग रहा है जो मैं बोल रही हूँ, आपको दिल से लग रहा है, क्योंकि मैं अपने दिल का ही बता रही हूँ आपको। प्रैक्टिकल में मैं 50 साल से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हूँ, बचपन से लेके ज्ञान सुनती थी, लेकिन ये जो समस्या आती है, देखो ज्यादा वार किस पर होता है, दुश्मन का, किले पर, किले पर होता है ना, पहला वार किस पर होता है? किल्ले पर। तो हम भी किल्ले में रहते हैं, हम ईश्वर की सेवा में, सेवा केंद्र पर रहते हैं, तो हमारे पास ज्यादा समस्या आती है, लेकिन हम उस समस्याओं को यूं ही भगा देते। किसके बल से? सुप्रीम पावर से, मेडिटेशन से, ईश्वरीय ज्ञान मनन चिंतन, ज्ञान का मंथन करने से। ये जो ज्ञान आपने जो सुना, तीन दिन सुन रहे हैं, इसको अप्लाई करना है। इस ज्ञान को क्या करना है? अप्लाई। दूसरा बात ये है, पॉइंट में बता रही हूं कि समस्या आने का कारण, पहला हमारा स्वभाव। स्वभाव में फिर चिड़चिड़ापन है, यदि मतलब बहुत चिड़चिड़ा हो जाना हो और क्रोधी हो जाना, गुस्से में आ जाना, या जल्दीबाजी में करना, या किसी बात में आवेश में आ जाना, झूठ बोलना, या कोई बात में छिपा छिपी कर देना, तो ये जो हमारे संस्कार हैं, पुराने संस्कार हैं, इसको भगवान कहते पुराने संस्कार। आप जब भी इस ज्ञान में आए, यहाँ पर ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आए, तो आपका नया जन्म हुआ। तो आज के बाद जो जो समस्याएं हैं, ये समस्याएं आपकी पहले की थी, अभी की नहीं, और आगे आपके यहां से जाने के बाद शायद समस्या बहुत ही आ सकती है, नहीं भी आ सकती, जो भी है, जो भी आए, तो आप उसको, समस्याओं को पूरा करने के लिए एक तो ज्ञान योग कर दीजिए। रोज एक घंटा कम से कम अपने लिए निकालिए। आप ईश्वर का मोबाइल में तो आजकल बहुत ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान आता है, वो मुरली सुन लीजिए, उसमें से आपको उत्तर मिल जाएगा। सेवा केंद्र पर जाइए, हमारे जो बहने मुकरर, उनसे भी आप अपना मन की बात बोल सकते हैं, उनसे भी आप उत्तर कर सकते हैं, और आप सक्षम है, सशक्त है हर समस्या को हटाने के लिए। और दूसरी बात ये है कि समस्या किसके पास में आती? बहुतों के पास आती, लेकिन उस समस्या को हमें क्या करना है? देखो, एक महिला थी, छोटी आयु की थी, 25-21 साल की, शादी तो हुआ था, लेकिन एक कंपटीशन लगा था, तो ये पहाड़ चढ़ना है, तो चढ़ना शुरू कर देती है, और बहुत ऊंचा था, तो सभी लोग जो नीचे जो चढ़ नहीं रहे थे, जो आधे में वापस आए, तो उसको चिल्ला रहे थे, तू नहीं जाओ अभी ऊपर, नहीं जाओ, क्योंकि वो बहुत ऊंचा है, गिर जाएगी, अपने में से कोई गया नहीं आज तक, तुम नहीं जाना, और बहुत चिल्ला रहे थे। लेकिन वो चढ़ती गई और लास्ट टॉप पर पहुंच गई और विजयी हो गई। तब जब उसने, सभी ने पूछा, हम चिल्ला रहे थे, तुम नीचे क्यों नहीं आई, ऊपर ही चलती गई, बोला मैं तो बहरी हूं ना। बाद में पता चला उसका कान ही नहीं है, उसको सुनने में नहीं आ रहा था। तो इस संसार में हमारे पास जो भी समस्या आती है, कोई मेरी निंदा करता है, मेरे लिए कोई बुरा बोलता है, मेरे लिए कोई खतरनाक शब्द बोलता है, आप क्या कीजिए? जो अच्छी बातें नहीं, वो सुनते हुए भी क्या नहीं करो, नहीं सुनना। ठीक है ना? भाई जी को भी अच्छा लग रहा है, आप लोगों के लिए भी है, भाइयों के लिए भी है, ऐसा नहीं है बहनों के लिए, लेकिन ये सुनते हुए भी नहीं सुनना है। कमेंट्स देने वाले लोग आपको बहुत मिलेंगे, आप कमेंट्स के ऊपर ध्यान नहीं देना। इसलिए मराठी में कहते हैं, निंदकाचे घर असावे शेजारी। निंदक जो होता है वो अपने बाजू में होगा तो अच्छा है। आप कहेंगे ये क्या, मेरी निंदा करने वाली मेरे बाजू में आई? नहीं, वो आपका मित्र है। हमारे पुराने जमाने वाले लोग कहते थे वो मित्र है। क्यों? क्योंकि वो आपको अलर्ट कर रहा है, आपकी गलतियां से बचाने के लिए वो खड़ा है। आपने जैसे ही गलती की, वो आपकी निंदा शुरू कर देगा, तो आपका टीचर हो गया ना वो। कितना अच्छा शिक्षक हो गया, फ्री में मिल गया 24 घंटा। इसीलिए दूसरी बात, हमारे घर के अंदर समस्या है। देखो, मैं एक सत्य घटना आपको सुनाती हूँ, फिर बहन जी का भी हम सुनेंगे। बेंजी के एक्सपीरियंस नहीं गए। तो सत्य घटना है कि हमारे पास एक डॉक्टर आते हैं, तो वो जो डॉक्टर है उनके पास एक महिला आती है, और वो महिला जो है वो डॉक्टर को कहती, डॉक्टर साहब मेरा ना बहुत सिर दर्द है, बहुत माइग्रेन का दर्द है, टू मच दर्द होता है, आप मुझे दवाई दो। तो डॉक्टर साहब दवाई देते हैं, वो एक मास की दवाई लेके जाती है। फिर पर्टिकुलर वही दिनों में आती है, उस दवाई से अभी कुछ नहीं हो रहा है, बहुत दर्द है, बहुत दर्द है, बहुत दर्द है, तो डॉक्टर साहब दे देते हैं दवाई। तीसरे मास, चौथा मास हो जाता है, तो डॉक्टर साहब पूछते हैं आपको ये पर्टिकुलर इन दिनों में ही कैसे क्या दवाई लगती है, कैसे क्या आपका सिर दर्द उठ जाता है, तो कुछ तो कारण होगा, आप नोट कीजिए क्यों ऐसा दर्द उठ जाता है आपको। तो उन्होंने कहा कोई कारण नहीं है। नहीं, बोला तो आप थोड़ा ढूंढो तो सही, अपना चेकिंग करो क्यों ऐसा होता है। बोला कुछ भी नहीं, ये 15 दिनों में मेरी सासू माँ मेरे घर में रहने को आती है, तो नेचुरली मेरा सिर दर्द तो बढ़ जाता है, तो 15 दिनों रहने को आ जाती तो मेरे को बहुत टेंशन हो जाता है, 15 दिन दूसरे बच्चे के पास जाती है। तो उन्होंने कहा ठीक, इसकी दवाई तो मैं नहीं दे सकता है अभी, इस मास से मैं आपको ये दवाई नहीं दूंगा। तो बोला क्या, क्यों, क्या करूं, कहां से लूं। तो बोला ये जो दवाई है ना, आपको हमारे ब्रह्मा कुमारी दीदियों से मिलेगी, आप आज शाम को इसकी दवाई लेने के लिए आश्रम पर जाना। और वो भाई बहन शाम को मेरे पास आती, हम काउंसलिंग भी करते हैं, तो हम, वो बहन हमारे पास जब आई तो हमने उनको पूछा सब, उन्होंने सब दिल की बातें बताई, मन की बातें बताई, ये तकलीफ है, ये ऐसा है, वो ऐसी है, ये है, वो है, बहुत सारी बताया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं सब पहले उसका 1 घंटा सुन लिया, फिर उन्होंने को मैंने बताया देखो कल से मैं आपका कोर्स शुरू करूंगी, दवाई आपकी कल से एक्यूरेट शुरू होगी, लेकिन आज का पहला डोज जो मैं आपको देंगी वो आपको करना है होमवर्क, बहुत इम्पोर्टेंट होमवर्क है, कल आप जब ये आओगे कोर्स करने तो आप सासू माँ के 8 गुण लिख के लाना है। क्या है होमवर्क? अच्छे सदगुण, सासू माँ के सदगुण, अच्छे गुण लिख के लाना। बोला दीदी मैं आपको इतनी कहानी सुनाई और आप बोल रहे गुण लिखो, उसमें तो कोई गुण ही नहीं है। मैंने कहा क्यों नहीं गुण है, इतना गुणवान पति तुमको जिसने दिया उसमें गुण क्या नहीं होंगे, बहुत गुण है उसमें, तुम सिर्फ ढूंढना शुरू करो, ये लिख के लाना, अगर आप नहीं लाएंगे तो आप अभी सिर दर्द है, आगे चल के आप डिप्रेशन में जाओगी, तो आपको मंजूर है? तो बोला नहीं नहीं। फिर दूसरे दिन जब आई तो बड़ी खुशी से थी, इतनी खुश थी, और साथ में सासू माँ को भी लेके आई, साथ में सासू माँ को भी लेके आई, और बोला दीदी जैसे मैं घर में गई आपने मेरा चश्मा ही बदल दिया, कलर बदल दिया उसका, और जैसे मैं घर में गई फ्रेश हुई, कपड़े बदली किए, अब देखो किचन में खाना, भूख लगी थी बहुत, देखा तो खाना तैयार था, सासू माँ ने रोटी सब्जी जो आया खिचड़ी बना के रखी थी, तो मैं पहला गुण लिख दिया, मेरी सासू माँ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, मेरे लिए प्यारा गर्म भोजन बनाती है, पॉजिटिव हो गई। बोला मैं, और उसके बाद दीदी मैं आपको क्या बताऊं, कमरे में गई, देखा मेरी सासू माँ ने ये घर बनाया, ये संसार बनाया, ये चीजें, अब जाएगी वो तो मेरे को सब देके जाएगी ना, वो क्या लेके जाएगी, उसका क्या है, और रात भर मैं सोई नहीं, आंसुओं की धारा बहती गई, और मैं सासू माँ का एक एक गुण ढूंढ दिखता गया कि मेरी सासू माँ ने एक माँ अपने बच्चे को तैयार करने के लिए क्या नहीं करती है। आप हर एक माँ सोच सकती है, अपने बच्चे को 9 मास पेट में रख के उसको बड़ा करती, उसका सब गंदा धो के बड़ा करती, वो सोता है नहीं तो जागेगी रात दिन, कितना कष्ट करते हैं वो हर एक माँ ही जान सकती है। और ऐसी माँ तैयार कर बच्चे को तैयार किया, बड़ा किया, स्कूल में पढ़ाया लिखाया, क्या नहीं किए माँ ने कष्ट, और इतना गुणवान बच्चा पोस्ट पर चढ़ाकर उस बच्चे को मेरे हवाले किया, वो पति मेरा बन गया, और क्या चाहिए माँ से मुझे, क्या चाहिए मुझे। और इतना मेरी आंख खुल गई, और इतना मैं आपको बता नहीं सकती शब्दों में कि माँ के उपकार क्या हैं। और मैं आई तो उनको हाथ में हाथ लेके मैंने कहा माँ चलो मैं आपको ऐसे सेवा केंद्र पर लेके जाती। और मुझे बताने में एक हर्ष हो रहा है कि वो बहन जी और उसका पति, बच्चे और सासू माँ, सभी परिवार रोज सुबह हमारे पास प्रवचन में रोज आते हैं, और उनका घर नरक से स्वर्ग बन गया। ओनली क्या किया, पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव। अभी आप एक सासू माँ ही ने तो उदाहरण दिया मैंने आपको बताने के लिए, लेकिन एक सासू माँ जो है ये सत्य घटना थी इसलिए बताया, लेकिन सिर्फ सासू माँ नहीं, आप ऑफिस में जा रहे हैं, आपके बॉस है, आप वर्क में है, बाजू वाली है, हाँ किसी ने कहा, मैंने कहा बहन जी आप कैसे हो, बोला मेरे सब अच्छे, मेरी बहन अच्छी, भाई अच्छा, पति अच्छा, सिर्फ बाजू वाली अच्छी नहीं है, उसके तंग हूँ, बाजू वाली भी अच्छी है, तुम सिर्फ एटीट्यूड रखो, पॉजिटिव देखो, उसके गुण देखो। आज के बाद यहाँ से जाने के बाद जो व्यक्ति आपको तकलीफ देने वाला है, क्योंकि हर एक को एक तो भी मिला होता है, होता है या नहीं होता है? जो ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक तो होता ही है पीछे पड़ा हुआ, चाहे जेंट्स है चाहे लेडीज है, तो उसके गुण देखना है। ये गुण देखने की जो कला है ना, भगवान ने कहा हर समस्या में से, हर परिस्थिति में से अच्छी बात उठाना, इसके मैं एक्स्ट्रा मार्क्स देता हूँ। सुप्रीम टीचर का महावाक्य है, क्या कहा कि अगर आपके पास जो समस्या आई उस समस्याओं में से पॉजिटिविटी उठा दो, अच्छी बात उठा लो, सीख उठा लो, तो आपको उसका एक्स्ट्रा मार्क होगा। इसलिए भगवान ने कहा जो हो रहा है उसमें भी कल्याण, आज भी कल्याण, आगे भी क्या होगा कल्याण। कोई भी बात अकल्याण की इस संसार में हो नहीं सकती, ये विश्व ड्रामा है, ये विश्व एक नाटक है, हम 3 घंटे का नाटक देखते हैं, लेकिन ये विश्व पूरा 5000 बरस का ड्रामा है, नाटक है, इसमें हर बात मेरे को सिखाने के लिए आती है, मुझे आगे बढ़ाने के लिए आती है। और जब मैं परीक्षाओं को पास करूंगी तभी क्या होगा, मैं आगे के क्लास में जा सकूंगी। फिर आप देखेंगे दूसरी हमारी समस्या महिलाओं पर आती है कि हमारे पति लोग अच्छे नहीं चलते हमारे साथ, या उनका और कहीं फेयर है, या और कहीं उनका है, ये भी बहुत बड़ी माताओं के लिए एक समस्या आती है, या माताओं भाइयों को भी ऐसी एक समस्या आती है किसी किसी को। मैं एक आपको उदाहरण बताती हूँ, हमारे जीजा माता शिवाजी की माँ, मैं उनका एक चरित्र पढ़ा, बहुत सुंदर चरित्र है वो शिवाजी महाराज की मम्मी जीजा माता का। जब जीजा माता अपने बच्चे को जन्म दिया, थोड़े दिनों के बाद उनके पति के पास चली गए, दूसरी जगह रहते थे, तो पति के पास जब गए वो वहां रहते थे, तो जीजा माता भी वहीं रहने लगी बच्चे को लेके, और उनकी और एक पत्नी भी थी, उसका भी एक बच्चा था, तो दोनों भी सब खेलते थे रहते थे। लेकिन थोड़े दिनों में ऐसा देखा माँ ने, जीजा माता ने, कि मेरा बच्चा रात को बेड पर नहीं है, मैं वो बीच में मेरे को नींद लगने के बाद उठ के जाता है, तो ये देखने के बाद उसको बहुत सतर्क थी ना बच्चे को सुधारने के लिए, माँ बहुत, जीजा माता बहुत सतर्क थी, तो वो देखने लगी सारे महल में ढूंढा बच्चे को कहाँ गया कहाँ गया, तो उसने देखा दोनों भाई जहाँ महल में रात को क्या होता था, नाच होते थे पहले जमाने में, मनोरंजन के कार्यक्रम करते थे, तो वो देख रहे थे पर्दा पीछे करके चिपके, वो दोनों बच्चे क्या चल रहा है, खेल कैसे वो चल रहा है, उसको तमाशा या कुछ भी खेल बोलो कुछ भी पहले जमाने में होता था, वो देख रहे थे बच्चे। वैसे ही जब जीजा माता ने देखा तो शिवबा का हाथ पकड़ा, चलो रूम में चलो, दोनों को लेके आई और अपने बेड पर अपने जीजा माता ने शिवाजी महाराज को बिठाया और कहा, देखो तुमको मैंने जन्म इस काम के लिए नहीं दिया है, ये देखने के लिए तेरे को जन्म नहीं दिया है, आज से तेरा जीवन बदल जाएगा। और दूसरे दिन माँ ने कहा अपने पति को, महाराज मैं पुणे में जा रही हूँ, छोटे शुभा को लेके जा रही हूँ, मैं इसको घड़ाऊंगी और आप इस बच्चे को घड़ाओ, दोनों एक बच्चे को घड़ाएंगे, कौन आगे जाता है देखेंगे। और सचमुच जीजा माता ने सब कुछ त्याग करके अपने शिवाजी महाराज को गढ़ पर लाया, वहां पर उसने पूरा ट्रेनिंग दिया, पूरा शिक्षण दिया बच्चे को और अच्छा चरित्रवान शिवाजी महाराज को घड़ाया। तो आप देखिए कितनी महान वो माता है, कितना त्याग किया। और आजकल की महिलाएं सिर्फ झगड़ने में ही पूरा हो जाती, पूरा उनसे झगड़ा ही झगड़ा, अपने बच्चों पर ध्यान नहीं, अपने बच्चे। मैं एक केस सुना, किसी का पत्नी भाई का दूसरी जगह था, उनके पति पत्नी के झगड़े रोज चलते थे, वो बच्चा मासूम 10 साल का, उसको बहुत दुख होता था इतना झगड़ा, तो उसने अपने आप को ही खत्म कर दिया। वो रोज माँ बाप को बोलता था झगड़ो नहीं, शांति रहो, नहीं सुना। तो इसी में ही अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे, इसलिए रास्ते बहुत हैं। कल रात को हमने सुना कहीं ना कहीं प्रकाश का उजियाला है ही भगवान का, हमारे रास्ते कभी सब बंद नहीं होते जीवन के, हमेशा अपने रास्ते कहीं ना कहीं अच्छा मार्ग है जो भगवान ने कहा ढूंढो। अपने जीवन में कभी हारना नहीं, कभी ये सोचना नहीं कि इतनी समस्याएं बढ़ गई है अब तो मैं मर ही जाती हूँ, या जहर खा लेती हूँ, या मैं कुछ भी कर लेती हूँ कुछ भी, अभी तो बहुत सारी दुनिया बढ़ गई आगे, ये कभी नहीं सोचना। इसलिए हमेशा ये गीत रखना, दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन अगर जहर है तो पीना ही पड़ेगा। बहुत सुंदर लाइन है आगे भी। तो ये जीवन कोई खराब जीवन नहीं है, जीवन ये बहुत सुंदर है, सिर्फ जीना आना चाहिए। एक्चुअली देखा जाए तो जीवन ये भगवान की सबसे बड़ी गिफ्ट है, ये ईश्वर की गिफ्ट है, इसको हम अपने मन से कभी भी खत्म करने का विचार भी नहीं कर सकते। ईश्वर ने कहा संकल्प भी आया, आपको ये विचार भी आया तो भी उसका पाप है, 100 गुना पाप है। सोचना भी नहीं कि मैं इससे तो मर जाऊं। आजकल सहनशीलता न होने के कारण इंसान क्या करता है, पहला संकल्प यही करता है इससे तो मर जाऊं। नो, हमें जीना है और सबको जीवदान देना है। हम कई लोगों के जीवन घड़ाने वाले हैं। आप लोग तो कल परसों के कार्यक्रम में देखा कि माँ कितनी महान है, नारी कितनी शक्तिशाली है, उसके अंदर जो सिफतें हैं, जो गुण है वो प्रभु ने एक्स्ट्रा दिए। कहते हैं कि नारी जो है वो भगवान का रूप है, क्यों? क्योंकि भगवान ने कहा हर घर में मैं नहीं विराजमान हो सकता, इसलिए एक एक नारी को मैंने अपने रूप में वहां विराजमान की। और आप देखेंगे नारी में एक्स्ट्रा निर्णय शक्ति होती है, होती है नहीं होती है, होती है, क्योंकि उसका प्रभु की देन है। नारी में एक्स्ट्रा मैनेजमेंट है, नारी में बहुत शक्तियां हैं, इतनी शक्तिशाली नारी है जो नर को भी नारायण बना सकती है। एक नारी नर को भी क्या बना सकती, नारायण बना सकती। अगर कोई कहते मेरा पति शराबी है मैं क्या करूं, मैं कहती तुम्हारी कमी है, तुम उसको अच्छी लाइन पर ला सकती है। हमारे पुराने इतिहास में बताते हैं कि एक एक नारी अपने पत्नी को पति को घड़ाने के लिए कितनी मेहनत करती थी। हम इतना अच्छा कर्म कर सकते हैं जो हम अपने घर को स्वर्ग बना सकते। इसलिए भगवान ने पहला नाम किसका रखा, लक्ष्मी फिर नारायण। पहला नाम किसका, लक्ष्मी फिर नारायण। पहले सीता फिर राम, पहले सीता है फिर राम, राधा फिर कृष्ण। कोई भी नर जो है वो आगे गया है तो उसके पीछे एक पुरुष तो है ही, और पुरुष के पीछे एक नारी है। तो ये गाड़ी हमको सुचारू रूप से चलानी है, उसके लिए समस्याएं जो है वो ईश्वर की याद से आप समाप्त कर सकते हैं। अब मैं आधी बात बाद में बताऊंगी, पहले बहन जी का हम 5 मिनट अनुभव सुनेंगे। बहुत सुंदर कार्य कर रहे हैं।
थैंक यू। ओम शांति। दीदी आपने इतना सुंदर कहा है कि मैं खुद अपने आप को यहाँ बैठ के भूल गई थी। आज का टॉपिक बहुत ही सुंदर टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, और जिससे जिसमें परिवर्तन आने की आज बेहद जरूरत है। हम सारी महिलाएं एक टिपिकल फेज से जाती है, बचपन से लेके बुढ़ापे तक। तो हर फेज में हमें अपने लेवल पे एक त्याग करना पड़ता है, ये विधि लिखित है। क्यों? क्योंकि दीदी ने जैसे कहा कि ईश्वर ने हमें वो एक्स्ट्रा एनर्जी दी है, तो हम इसे पॉजिटिव वेव में लेते हैं। एक्स्ट्रा एनर्जी दी है इसलिए हमें वो एक्स्ट्रा वर्क करना है, ना कि हमें त्याग करना है। चीजों को अगर हम पॉजिटिव वेव से सोचेंगे, मेरी लाइफ का एक ही स्लोगन है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। बस इसे ध्यान में रखो एंड जस्ट गो हेड। सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी है, हमने जिनसे शादी की है, हमारे बच्चे, नो डाउट हस्बैंड भी उतने ही इक्वल है, बट मैं समझती हूँ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज हम है, एक्स्ट्रा क्वांटिटी हमारे अंदर है। सो करियर के साथ साथ मैं थोड़ा सा इस पे बोलना चाहूंगी दीदी, फिर मैं अपने कार्य के बारे में बताती हूँ। सो सबसे पहले हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है स्वर्ग जैसा हमारा घर। हमारे घर में ही अगर शांति नहीं है, वो शांति अगर हम वो दहलीज क्रॉस करके बाहर ढूंढ रहे हैं, इसका मतलब हम कहीं तो वीक है। तो पहले हमारे वीकनेस को हमें भगाना है, हमारे घर जैसे स्वर्ग को स्वर्ग ही बना के रखना है, और वो है नारी के ही अंदर। छोटा सा एग्जाम्पल है, आज हम यहाँ आए हैं घर छोड़ के, कितना घर मैसअप हो गया होगा, घर वापस जाके किसे ठीक करना है, हमें ही ठीक करना है। तो घर को साफ सुथरा कौन रख सकता है, हम ही रख सकते, नारी ही रख सकती है। तो घर में रहने वालों के सबके मन को भी साफ सुथरा कौन रख सकता है, नारी ही रख सकती है। दोष दूसरे को दोष देके हम अपने आप को खुश समझते हैं, अपना बोझ उस पर डाल रहा, तेरी वजह से ये हुआ। देखो ना, तीन उंगली किसके पास है, मेरे पास है। जैसे कि दीदी ने कहा, मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस चीज से कि कुछ चीज बिगड़ती है तो उसमें भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन हमारा होता है। तो दूसरों को दोष देने से पहले, दूसरे मतलब अड़ोसी पड़ोसी नहीं, माय डियर सिस्टर्स, हमारे घर से वो शुरुआत, हमारे बच्चों से शुरुआत, हमारे पति से शुरुआत, हमारे सास ससुर माँ बाप उनसे शुरुआत। उन्हें दोष देने से पहले, उन्हें कोई भी चीज बिगड़ने से पहले, उस चीज को पहले अभ्यास कीजिए, हमारी गलती कहाँ है, मैं कहाँ गलत हूँ। अगर आपको लग रहा है देखो हमारी अंतरात्मा हमसे झूठ नहीं बोलती, भले हम एक बार अपने बच्चे से झूठ बोल दें, अड़ोसी पड़ोसी माँ बाप से झूठ बोल दें, झूठ हर कोई बोलता है, कोई सच का दुल्हन नहीं है, झूठ मैंने भी बहुत बोले हैं। लेकिन जब वो ज्ञान आ जाता है, सच सही और गलत का अंतर जब हमें समझ में आ जाता है, उसके बाद भी अगर हम गलती दोहराए तो दैट इज क्राइम। गलती करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि सही क्या है। सही बोल रही हूं ना मैं? एनीवे कल का मुझे एक थोड़ा सा बोलना है कि जो एक एग्जांपल वो दे रहे थे कि 5 दिन पति ने खाना नहीं खाया, 6वें दिन थोड़ा सा मैं इस पे बोलना चाहूंगी, चलेगा ना? 5 दिन तक पति खाना नहीं खा रहा है, हम 6वें दिन की राह कैसे देख रहे हैं? फर्स्ट डे ही भाई नहीं बोल सकते, सॉरी, आप बाहर क्यों खाना खा के आ रहे हो? व्हाट इज द रीजन? मेरे हाथ का बनाया हुआ खाना पसंद नहीं आया है, आ रहा है आपको? क्या स्वाद में कमी है? बाहर बिजी रह गए हो, बाहर का खाना अच्छा लग रहा है? पहले ये फाइंड आउट करना है। मुझे कल बहुत अफसोस लगा कि ये पहला आंसर किसी ने दिया ही नहीं, क्यों 5 दिन मेरा पति बाहर खाना खाएगा? मेरे होते हुए बच्चा बाहर खाना खाएगा नहीं चलेगा, हम तुरंत क्यों? क्योंकि उसके ऊपर हमें अंकुश रखना है ना भाई, कल वो हमारे लाठी है। अच्छा, क्वेश्चन समझ में नहीं आया। ओके, फिर उसमें डायरेक्टली डिवोर्स की बात? ना 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 ना, रिश्ता नहीं। नहीं, उन्होंने सवाल ही पूछा था कि 5 दिन आपका पति बाहर खाना खाता है, यार खाना खाता ही नहीं है घर पे। तो भी मैं यही कहूंगी, अन्न का अपमान अनादर कभी नहीं होना चाहिए। और हमारे घर में एग्जैक्टली ठीक है। अब मैं थोड़ा सा समय का, जी थोड़ा सा मैं अपने बारे में बताती हूँ। पिछले 10 सालों से मैं सेक्स वर्कर्स के लाइफ परिवर्तन पे काम कर रही हूँ। अभी तक कुछ 40 महिलाओं का जीवन हम परिवर्तित कर चुके हैं, और उनके बच्चों के लिए, उनकी नेक्स्ट जनरेशन, उनके एजुकेशन, उनके न्यूट्रिशन और उन्हें एक अच्छा शेल्टर मिले, इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। और समय की काफी कमी है तो उसमें तो अनुभव बहुत सारे हैं। वो ऐसी महिलाएं हैं, ऐसी बहनें हैं कि जिनके पास कोई फैमिली नाम की चीज ही नहीं है, सो दैट उनके प्रॉब्लम्स देखते हुए वी आर वेरी लकी। हमारे पास कुछ अलग प्रॉब्लम्स है लेकिन उनके सॉल्यूशंस भी है, और उनके पास तो फैमिली नहीं है तो उनके प्रॉब्लम्स कहाँ है जी। और प्रॉब्लम्स को अगर हम अपॉर्चुनिटी की तरफ देखते हैं तो प्रॉब्लम्स आती, समस्या आती, तभी हमें पता चलता है कि हमारे अंदर कितना गट्स है कि हम उसे सॉर्ट आउट करके बाहर निकल सके। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। यहाँ से मैं भी बहुत अच्छी अच्छी यादें और मेरी कुछ आदतें यहाँ छोड़ के जा रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा, जीवन में मैं पहली बार यहाँ पे आई हूँ और सच में स्वर्ग यहीं मुझे दिखाई दिया। मेरी बहुत तमन्ना थी कि मेरी कोई बड़ी दीदी रहे। मैं हमेशा मम्मी को बोलती थी, मम्मी एक बड़ी सिस्टर होनी चाहिए थी, बट यहाँ हर किसी को दीदी बुलाना पड़ रहा, मुझे बेहद खुशी हो रही है। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूंगी। आप सबने मेरा जो भी संबोधन सुना है, किसी को हर्ट हुआ होगा तो आई एम सॉरी, एंड कुछ अच्छा लगा होगा तो प्लीज उसे प्रैक्टिकल लाइफ में लाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हमारी नेक्स्ट जनरेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच। ओम शांति।
हम बहन जी के लिए फिर से करतल ध्वनि से ताली बजाएंगे। बहुत ही सुंदर ये सेवा करते हैं और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी उस सेवा में और इम्प्रूवमेंट करेंगे, उन लोगों को वैल्यूज सिखाएंगे, और ताकि वैल्यूज जहाँ हैं, जहाँ वैल्यूज यानी सहनशीलता, नम्रता, मधुरता, संतुष्टता, पवित्रता, ये गुण होंगे तो ऑटोमेटिकली उनका और जीवन दिव्य बन जाएगा। ये मैं बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे भी आपका सुन के। अच्छा, अभी हम 10-15 मिनट है तो कोई के प्रश्न है मैं आपको उत्तर बताऊंगी। आइए यहाँ पर आके बताइए, प्रश्न बताइए, मैं आपका ज्ञान का आंसर बताऊंगी, ताकि आपके मन में यहाँ से जाने के बाद कोई प्रश्न न रहे।
ओम शांति
जी,
मैं कर्नाटक से आई हूँ। आपने कहा जो भी समस्याएं आते हैं, समस्या का 10% तो हमारी भी गलती रहती है, जरूर रहती है, क्योंकि हमारे बिना तो समस्या क्रिएट होता ही नहीं है, इस बात से मैं सहमत हूँ। लेकिन एक एक बार मुझे लगता है कि हर इंसान के अंदर एक आत्मा बसी है, आत्मा ही भगवान है। जो आध्यात्मिक मार्ग से चलते हैं वो लोग जानबूझकर तो प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी दीदी ने भी बोला अच्छा बुरा दो रास्ते रहते हैं, जबकि हमें आध्यात्मिक नॉलेज भी है अच्छा रास्ता कौन सा है और बुरा रास्ता कौन सा है। तो आध्यात्मिक जिन लोगों में है वो तो बुरा रास्ता चुनेंगे नहीं, 99% तो अच्छे रास्ते ही चुनेंगे। अच्छे रास्ते पर चलने के बावजूद भी एक एक बार समस्याएं क्रिएट होती है, क्योंकि वो इंसान जानबूझकर तो प्रॉब्लम्स को क्रिएट नहीं कर पाता, तभी भी इतना बहुत सारा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं, तब परिस्थिति में क्या करना चाहिए। थैंक यू।
बहुत अच्छा प्रश्न है कि वो ज्ञानी है, वो समझदार है, फिर भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो हम क्या करें? उसके लिए परमात्मा ने कहा है कि हमेशा ये समझो मेरा कोई पिछला अकाउंट है, पिछले जन्म का अकाउंट है, क्योंकि हम जहां से आए हैं, कहां से तो भी पहला जन्म लिया है हमने, वहां पर मैंने अकाउंट छोड़ के आई हूं, पूरा करके नहीं आई हूं। तो वो अकाउंट, भले वो ज्ञानवान व्यक्ति है, भले वो अच्छा व्यक्ति है, फिर भी वो इतनी मेरे लिए परीक्षाएं खड़ी की है, तो मुझे अभी इसका आंसर जो देना है वो मुझे थोड़ा सा धीरज, परमात्मा की टचिंग, ईश्वर की राजयोग का अभ्यास करना है। वो है सुबह को 3 से 5 का टाइम। ऐसा हमारे पास भी ज्ञानी व्यक्ति से आती है परीक्षा, तो हम क्या करते हैं, 3 से 5 बजे का समय जिसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, तो आप उस दिन रात को जल्दी सो जाओ, एकदम 3 बजे चलो पहले वारी नहीं उठो, 4 बजे उठो, 4 बजे उठ के थोड़ा ब्रश करके या फिर भगवान के आगे बैठो मुंह धो के, और ईश्वर को वो प्रॉब्लम सुनाओ, और परमात्मा से शक्ति लो, कनेक्ट सुप्रीम पावर। जैसे हमारा मोबाइल डिस्चार्ज होता है तो हम क्या करते, सुबह सुबह उठते पहला चार्जिंग करते, तभी वो मेरे को दिन भर काम देता है। उसी तरह से मेरे को ये प्रॉब्लम जो खड़ा हुआ है मेरा अकाउंट के कारण हुआ है और वो मुझे ही करना है, तो वो अकाउंट को पूरा करने के लिए ईश्वर का ध्यान उससे भी कम हो जाएगा। जितना आप मेडिटेशन करोगे आपका ऑटोमेटिकली अकाउंट खत्म होता जाएगा, और आपको अच्छा रास्ता बताएंगे भगवान कि आपको कैसे सहन करना है, कहाँ सहन भी करना है, कहाँ शिव शक्ति भी बन के मुकाबला भी करना है, उसका बैलेंस रखने की ताकत आप में आएगी। और अपने शक्ति का उसको फिर आप बाद में क्रिएट कर सकते। फिर हमारे पास हमारे दीदी ने और बड़ों ने हमको सिखाया कि अगर वो आत्मा आपको बहुत ही प्रॉब्लम में खड़ा कर रहा है तो आप भगवान की आराधना करते करते जैसे आगे जाएंगे, लवलीन स्थिति में जाएंगे, एकदम भगवान के याद में मन खो जाएगा, फिर भगवान के आगे आप उस आत्मा को विराजमान करो लाइट के रूप में, कि परमात्मा आप इस आत्मा को भी सकाश दीजिए, इसको भी ताकत दीजिए और मेरे को भी ताकत दीजिए, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व कर हो जाएगा। आप ये जरूर ट्राई करना, आपको जरूर इसका आंसर मिलेगा। और कर्म फिलॉसफी बहनों इतनी कठिन है जो हम जान नहीं सकते, क्या हमारे कर्म है पिछले जन्म के वो हम जान नहीं सकते। एक छोटी कहानी बताते कि एक व्यापारी थे, उनको बाल बच्चा नहीं था, और वो बाल बच्चा न होने के कारण जो काम करने वाला लड़का था उसको ही सब काम दुकान का संभालता था। वो बड़ा हो गया, उसका अच्छा शादी भी हो गया उसका, और उसको धंधा पानी में वो सब संभालने लगा। धीरे धीरे क्या हो गया, वो जो सेठानी थी वो मर गई। अभी सेठ जी अकेले हैं, तो उसको लगा कि सेठ जी का तो कोई बच्चा है नहीं, मैं ही हूँ। तो वो बच्चा जो है वो सब संभालने लगा, वो भी बड़ा हो गया, उसकी भी शादी हो गई। और फिर उसको पाप मन में आया कि ये बूढ़ा सेठ जी मरे तो मैं जल्दी, मेरे को दुकान हाथ में आ जाए सब कुछ। तो उसने क्या किया, एक डॉक्टर को राजी करके उसको ऐसी दवाई दिया जो सेठ जी जल्दी से जल्दी मर गए। फिर क्या हो गया, उसकी शादी तो हो गई थी, उसके घर में उसको बच्चा पैदा हुआ। बच्चा पैदा हुआ, वो बड़ा हो गया। बड़ा होने के बाद वो 15 साल का हुआ, तो वो इतना बीमार यूथ बच्चा, और वो बच्चे के पीछे सारी स्टेट खत्म, सब दवाइयां करने में ही उसको बहुत लगा। और वो बच्चे की मतलब जो पत्नी थी, उसकी शादी भी हो गई थी वो बच्चे की, तो शादीशुदा बच्चा था, तो वो पत्नी भी दुखी, बच्चा मर गया थोड़े दिनों के बाद, और जितनी प्रॉपर्टी थी वो खत्म हो गई। और फिर वो पत्नी जो थी वो तो विधवा हो गई, लेकिन बच्चा जाने के समय उसको एक वाचा आ गई, याददाश्त आ गई, बोला पप्पा मैं कौन हूँ, मैं तुम्हारा सेठ जी हूँ, और ये जो मेरी पत्नी है ये डॉक्टर है, जिसने मेरे से रिश्वत लेके आपको मैं मरवाया, आपकी प्रॉपर्टी हड़प किया, और इसका आज मैंने पूरी मेरी प्रॉपर्टी मेरे तरफ लगा दिया, अब मैं जा रहा हूं। यानी कितनी गहरी है हमारी कर्म फिलॉसफी। हमारे बच्चे अगर हमारे जीवन में अच्छे नहीं है, पति हमारा अच्छा नहीं है, तो जरूर मैंने कुछ तो किया है इसके साथ। एक माता मेरे पास आती थी, वो कहती थी दीदी मुझे किससे भी डर नहीं, लेकिन बच्चे का डर है, ऐसा लगता है वो मेरा खून कर डालेगा, वो मेरे को चाकू से मारेगा, मैं बहुत डर रही हूँ मेरे बच्चे से। क्यों? जरूर उसने अपने बच्चे को पहले जन्म में कोई तो प्रकार, कोई उसका बच्चा होगा, पति होगा, दोस्त होगा, कोई भी होगा, या वो कोई लेडीज जेंट्स होंगी, तो मारा होगा उसने उसको, तभी उसको डर लग रहा है। देखो ये इतनी कर्म फिलॉसफी महान है। एक बहुत बड़े जज थे, और वो जो जज थे वो एक दिन अपने गैलरी में चाय पी रहे थे, और रस्ते पर उनका बंगला था, तो उन्होंने चाय पीते पीते देखा रोड पर ट्रैफिक में एक व्यक्ति आया और एक व्यक्ति को जोर से खून करके भाग गया, उसको मारा, गला काटा और भाग गया। और लोगों ने, दूसरा जो चलते वाला व्यक्ति था उनको, उस पर संशय आया, उसको पकड़ा और कोर्ट में लेके गए कि इसने इसका खून किया। वो बोल रहा है, चिल्ला रहा है, मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। और वही दूसरे दिन जज साहब के सामने वो लड़का आया कि इसने खून किया, इसने खून किया। और जज साहब ने तो ऊपर से देखा था, वो जिसने खून किया वो तो भाग गया था, और इसको उन्होंने देखा, इसने तो किया ही नहीं है। तो जज साहब ने कहा कल तुम मेरे से अलग मिलना। दूसरे दिन जज साहब भी थोड़ा ज्ञानी थे, तो उन्होंने उनको पूछा बेटा तुमने खून किया, बोला नहीं नहीं किया, रो रहा था। बोला ठीक है, अच्छा ये बताओ जीवन में तुमने कभी इसके पहले किसका खून किया है? तो उसने कहा हाँ मैंने किया है, जब मैं गांव से बंबई आ रहा था तो मेरे पास पैसे नहीं थे, एक बच्ची के गले में, छोटी बच्ची 2-3 साल की, उसके गले में सोने की चेन थी, वो मेरे को चेन चाहिए थी, तो मैं उसको मारा, खड्डे में डाल दिया और बंबई आया, और वो चेन से मैंने कमाया। बोला इसलिए आज तू पकड़ा गया, इसीलिए तू आज पकड़ा, सत्य के भगवान के दर से कोई छूट नहीं सकता, कोई छूट नहीं सकता। यानी कर्म फिलॉसफी इतनी गहरी है। मेरे पास कोई भी विघ्न आया, मेरे पास कोई परीक्षा आई, आप ये नहीं कह सकते कि मेरे ही पास क्यों आती, इसके पास नहीं आती, वो कितने सुख से रहती है, वो इतने पाप करते तो भी उनको कोई दुख नहीं है और मैं ही कोई दुख है। नो, भगवान का इतना सुंदर कारोबार है, हर एक को अपना कारोबार निभाना ही है। मेरा खाता मेरे ही पास आएगा, दूसरे के पास जा नहीं सकता। इसलिए कहते हैं मेरे भाग्य का कोई छीन नहीं सकता, और मेरे भाग्य में नहीं है तो मैं लाख प्रयत्न करने पर भी मुझे मिल नहीं सकता। मिल सकता है? नहीं मिल सकता है। इसीलिए कोई भी परिस्थिति आई है तो आप उसके लिए योग, मेडिटेशन, ये बहुत सुंदर इलाज है। और वेट एंड सी, थोड़ा सा धीरज करो, अधीर्य नहीं होना, क्रोधिष्ट नहीं होना, अपने तरफ से मूल्यों को ध्यान देना। मूल्य माना क्या? नम्रता। घर में अगर कोई गलत चल रहा है तो आप उसके साथ गलत नहीं करेंगे। वो गुस्सा करे तो मैं भी गुस्सा किया तो उसमें और मेरे में क्या फर्क, मैं शांत रहूं और शांति से उसको प्रेम से मदद करूं। और देखो, कोई गलत कर रहा है ना तो उसको हमें क्या करना है, प्रेम देना है, उसको रिस्पेक्ट देना है, क्योंकि वो गलत कर रहा है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट है तो हम भी उसको साइड नहीं देंगे, प्रेम नहीं देंगे, रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो और बुरा हो जाएगा और खराब हो जाएगा। इसलिए और फिर वो हमारे अवगुण निकालेगा कि तुम ऐसे हो, तुम ऐसे। घर में ऐसे ही होता है, माँ को वास्तव में बच्चे से बहुत प्यार होता है, पति से बहुत प्यार होता है, लेकिन उनकी गलती उसको सहन नहीं होती है, इसलिए वो क्रोध करती, वो गुस्सा करती और कुछ इलाज करती, बात नहीं करेगी और कुछ करेगी। आप सभी अनुभवी हो ज्यादा मेरे से, तो ये जो करना है ना ये गलत है, उसमें वो हमारी अवगुण ढूंढते, हमारी मिस्टेक ढूंढते हैं। तो इसलिए आपका प्रश्न का उत्तर है कि थोड़ा हम मेडिटेशन करें, कर्म फिलॉसफी समझे और ईश्वर की याद से वो ठीक होगा। ठीक है, और कोई प्रश्न है आपको कोई देना उत्तर?
ओम शांति दीदी। अपने मेडिटेशन करते हैं तो दीदी, मेडिटेशन में शॉर्ट एंड स्वीट में, जैसे अपने मान लो कि मैं तो ये कहता हूँ कि दीदी 5 to 10 मिनट्स ही निकालें चलो मेडिटेशन के लिए, 1 घंटा नहीं तो 5 मिनट, लेकिन उस मेडिटेशन में शॉर्ट एंड स्वीट में बताइए कैसे, क्या सोचें कि उसका निवारण है।
बहुत अच्छा भाई जी ने पूछा, और भी हमें एक ब्रेक लगाना है हमारे कार्यक्रम में, तो चलिए हम मेडिटेशन करेंगे, सीधा बैठेंगे। मैं आपको 5 ही मिनट का मेडिटेशन कराऊंगी, वो आप जरूर 1 घंटे में एक बारी करो, बार बार करो। चलिए सभी सीधा बैठेंगे, मैं जो बोलूंगी वो मन में आप बोलना। मैं एक आत्मा हूं, मैं आत्मा भ्रुकुटी के बीच में चमकता हुआ सितारा, पॉइंट ऑफ द लाइट हूं। मेरे मस्तक पर जहां तिलक लगाते हैं वहां मेरी आत्मा इमर्ज है, प्रकाश स्वरूप है। मैं आत्मा ओरिजिनल शांत स्वरूप हूं, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूं, मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूं। मेरे आत्मा के पिता परमात्मा प्यारे शुभ भोलेनाथ, आप मुझ आत्मा के पिता हो, मुझ आत्मा के भगवान आप रक्षक हो। प्यारे शिव पिता, मैं जो हूं जैसी हूं मैं आपकी हूं। भगवान, आप मेरे सर्वस्व हो, आप ही मेरे मन की भाषा जानने वाले हो। शुभ भोलेनाथ, आप सर्वोत्तम शक्ति हो, आपके शांति के किरणें सागर की तरह उछल उछल कर मेरे ऊपर पड़ रही है। मैं आत्मा शांति से भरपूर हूँ। हे प्यारे परमात्मा प्रभु, आप दया के सागर हो, आपकी दया के किरणें लहरें मेरे ऊपर आ रही है। परमात्मा आप सर्व शक्तिवान हो, आपके सर्व शक्तियों की किरणें मेरे ऊपर उतर उतर कर मुझे भरपूर कर रही। मैं शक्तिवान बन गई। शुक्रिया प्यारे भगवान, आपकी शक्तियां मेरे में है, मैं शांत रहूंगी, मैं सबके साथ प्रेम का व्यवहार रखूंगी, सभी को मैं क्षमा कर दूंगी। ओम शांति। इस तरह हम 5 मिनट निकालकर परमात्मा का रोज ध्यान करें। हो सके आप इसको बढ़ाते जाना रोज। और सबसे अच्छा मेडिटेशन के लिए समय जो है वह सुबह, मैंने कहा 3 से 5। अगर आपको नहीं होता है, आप 7 बजे उठते हैं तो 6 बजे उठिए, 6 बजे उठते तो 5 बजे उठिए, 5 बजे उठते तो 4 बजे उठते। वैसे भी कहा जाता है 3 बजे 4 बजे उठने वाले महायोगी होते हैं, 5 बजे उठने वाला भक्त होता है, 6 बजे उठने वाला गृहस्थी होता है, 7 बजे उठने वाला रोगी होता है, 8 बजे उठने वाला महारोगी होता है। आप कौन से कैटेगरी में है वो देखना, कौन से कैटेगरी में है ज्यादा। जल्दी उठना, जल्दी सोना, रात को मोबाइल देख के नहीं सोना, ईश्वर का ध्यान। बेड पर आप जाओगे ना तो क्या करना, देखो जैसे गाड़ी का ड्राइवर होता है, गाड़ी को कहाँ रख देता है, कैबिन अपना रख देता है, फिर घर में आके अपने बेड पर सोता है। तो आप भी, ये गाड़ी है हमारी, इस गाड़ी को बेड पर रख दो, फिर आप बैठ के 5 मिनट प्रार्थना करो, ये जो मैंने बताई वो बोलो, और फिर ये बताओ भगवान को कि आज मैंने क्या किया। हमारे बड़े दादी थे प्रकाशमणि, तो उनको पत्रकारों ने पूछा, दादी आप 800 सेंटर, तभी हमारे 800 कम थे सेंटर, इतने सेंटर फिर भी हजारों सेंटर संभाल रहे हैं, अभी तो हमारे 8000 सेवा केंद्र हैं, तभी और थोड़े कम थे। तो बोला आप इतने हजारों सेंटर संभालते, दादी आपको नींद आती है? तो दादी ने कहा जरूर, नींद तो बहुत अच्छी आती है, सिर्फ मैं सोते समय टाटा की गोली लेके सोती हूँ। क्या करती हूँ? टाटा की गोली सोती लेके फिर सोती हूँ। तो उन्होंने पूछा टाटा क्या है, कौन सी गोली ये टाटा की, कौन से मेडिकल शॉप में मिलती है? तो बोला टाटा माना आज दिन भर में मेरे जो समस्या आई, जो मेरे पास प्रॉब्लम आए, जो घटनाएं घटी, जो बातें आई, उनको मैं टाटा बाय बाय करके फिर सो जाती, ईश्वर को बताती हूँ और सो जाती हूँ, परमात्मा को बताने से मैं हल्की हो जाती हूँ और मेरा जीवन एकदम अच्छा हो गया। तो इसलिए आप भी ये टाटा की गोली फ्री ऑफ चार्ज लेके जाना, करेंगे आप भी सभी, रोज टाटा कर देना, जो समस्या आई वो भगवान के पास दे दो, कहाँ हम रखेंगे, हम तो इतने हमारे को इंसान बनाया है भगवान ने, हमारी पावर लिमिट है, सिर्फ हमें उसके ऊपर छोड़ना है बस। ब्रह्मदेव ने जब इंसान को रचा तब इंसान को बनाया, तब सब कुछ इंसान अच्छा बना दिया। फिर सभी देवताओं को पूछा, इंसान को मैंने बनाया लेकिन उसकी जो सुख शांति है ना, वो मैं कहाँ छिपा के रखूं? तो किसी ने कहा पहाड़ों पर, किसी ने कहा कोई मंदिरों में, किसने कहा कुछ। तो ब्रह्मदेव ने कहा, इंसान की सुख शांति मैं उसके मन में छुपा के रखता हूं। किस में रखता हूं? मन में। इसलिए कहते मन चंगा तो कठौती में गंगा। इसलिए मन को सुमन बनाओ। मन मोती जैसा, हमारे पास एक गीत है, हीरे जैसा जन्म मिला, मोती जैसा मन मिला। इस मन को दूषित नहीं करना, स्वच्छ रखना, मन को साफ रखना। जो बात है दिल की वो प्रभु को बताना, बहुत अच्छा जीवन है, आगे बढ़ेंगे। और कोई प्रश्न? किसका है प्रश्न या उत्तर? सब मिल गए? मिल गए हैं, बहुत अच्छा। और कोई अपना जीवन के अंदर? हम वैसे न्यू बॉम्बे से आए हैं, वहां पर भी हमारा एक बहुत अच्छा ये सेवा केंद्र है। बहन जी तो भिवंडी में बाजू में रहते हैं, तो वहां पर भी हम गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट का 21 जून का अपना जो कार्यक्रम होता है ना, योगा डे, आप सबको मालूम होगा। तो योगा डे का कार्यक्रम में हमको गवर्नमेंट बुलाते हैं न्यू बॉम्बे में। हर साल जैसे 5वां साल था, तो 5 साल से हम जा रहे हैं। तो वहां पर हमने ये कॉमेंट्री किया, और वहां सभी कमिश्नर आदि आदि सब गवर्नमेंट के लोग थे। तो एक दिन कमिश्नर साहब का फोन आया हमको, तो उन्होंने कहा, दीदी हमारा ना स्टाफ है बहुत टेंशन में रहता है। अभी अभी हमारे पास तो माहौल बहुत खराब है ऑफिस का, कि एक जो हमारा बहुत वर्क करने वाला बच्चा था, कुछ ज्यादा नहीं 31 साल का ही था, फैमिली भी थी उसकी, और ये बच्चा जो है ना वो हार्ट अटैक से मर गया। उसको बहुत टेंशन, बहुत टेंशन, बहुत टेंशन, घर का, ऑफिस का, बाहर का। तो मेरा विचार है आप हमारे ऑफिस में आके मेडिटेशन सिखाओ, कोर्स सिखाओ आपका। तो हम पिछले 2 साल से ये सारे ऑफिस में जाके फिर वहां पर हम 7 दिन का ये कोर्स कराते और उनको मेडिटेशन कराते हैं। इवन ड्राइवर्स, कंडक्टर्स जो गवर्नमेंट की सेवा में है, कितने करीब पिछले साल 5,000 हमारे नई मुंबई के ड्राइवर कंडक्टर्स को कोर्स कराया और उनको ये मेडिटेशन सिखाया। तंबाकू, क्योंकि आप देखेंगे वो लोग गाड़ी चलाते तो तंबाकू गुटखा जरूर खाते हैं, तो वो छुड़ाया। तो उसमें एक ने, वो जो सबका मुख्य थे वाहन चलाने, मतलब जो सेक्रेटरी वहां के बड़े थे परिवहन के, उन्होंने कहा जब से मैंने ये कोर्स किया, तब मैं 4 या 5 दिन भर में वो गुटके की पुड़िया खाता था, लेकिन अब मैं ज्ञान सुन करके मेरी पुड़ी सारी बंद हो गई और सबसे ज्यादा खुश मेरी बच्ची हो गई। इतनी खुश, क्योंकि उसको बहुत दुख होता था कि मेरे पापा का ये गुटका छूटना चाहिए और मेरा परिवार सुखी हो गया। तो अपने जीवन के अंदर इस संस्था से संलग्न होना आपके लिए गरिमा है, आपका भाग्य है। तो मेरी इच्छा है आप यहाँ से आज जाने के बाद अवश्य अपने सेंटर पर अवश्य जाइए, वहाँ के दीदी के पास जाइए, वहाँ ज्ञान सुनिए और आपका अगला जीवन आरंभ श्रेष्ठ कीजिए। यही मेरी शुभ भावना, शुभकामना। और कुछ है बोलना? 10 मिनट है हमारे पास, और या कोई गीत सुनाएंगे या अनुभव सुनाएंगे? हम एक आपको हमारे ब्रजेंद्रा दादी का अनुभव सुनाते, जैसे मैं ज्ञान में कैसे आई वो सुना देती हूँ। तो हमारे को, हम नासिक में रहते थे और नासिक में हमारा जो दादा नाना जी थे वो फ्रीडम फाइटर थे। तो उनका मेरे को बहुत संग रहता था और बहुत मैं संग में रहती थी, और वो शाम के समय रोज बालाजी के मंदिर में प्रवचन सुनने जाते थे, तो मैं भी रोज जाती थी। तो एक दिन वहां पर ब्रह्मा कुमारी दीदी आए, और जैसे मैंने उनको देखा, ब्रह्मा कुमारी, ये है 1970 की बात, और जैसे वो ब्रह्मा कुमारी दीदी का वेश देखा, उनका बोलना, उनके कान कपड़े और उनका प्रवचन देना, ये मेरे को इतना मन को भाया। करीब मैं आठवीं में पढ़ती होंगी, एट में, और फिर मैं उस दिन निश्चय किया कि बनना है तो मुझे यही जीवन बनाना है। उसके बीच में बहुत सारी परीक्षाएं आई, नाइन्थ किया, टेंथ किया, इलेवेंथ किया, ये पूरा किया, और फिर मैं अपने सेवा केंद्र पर आई। और उसके बीच में हम भक्ति बहुत करते थे, तो मैं देवी माँ को रोज कहती थी, हे देवी माँ मुझे ब्रह्मा कुमारी बनाना, हे देवी माँ मुझे ब्रह्मा कुमारी बनाना। और एक पढ़ाई भी हम पढ़ते थे ना, तो किताब सिर्फ सामने लेते थे, और सुबह को पिताजी को कहते थे हम सुबह 4 बजे उठ के पढ़ेंगे, और किताब सामने और मेडिटेशन करते थे। उनको लगता था कि ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं और हम मेडिटेशन करते थे। तो ये जीवन जो है ये गिफ्ट है, तो हमने जो निश्चय किया उसको मैंने पूरा किया। और फिर हमारे पिताजी ने कहा, आप तो जा रहे, कैसे होगा, समाज क्या बोलेगा। मैंने कहा हम आपके पास समाज में नाम रोशन करके आएंगे, ऐसा नहीं फिर से आएंगे। तो सचमुच आज इस जीवन को 50 साल हो गया, जो बाबा आगे ही आगे ईश्वर बढ़ाता है, आगे ही आगे करता है, और ये कार्य भी परमात्मा दिन दुगुना चार चौगुना चलता है। तो ये माउंट अबू का जो कार्य चल रहा है, ये कितना ईश्वर की कमाल है। आप में से देखो, जहां से आप आए तो वहां पर कितने लोगों के टिकट निकल गए होंगे, और कितने ने कैंसिल किया होगा, और किसी का तो ऐसा ड्रामा होगा जो दूसरे के टिकट पर आ गए, ऐसे भी राइट, उनके लिए ताली बजा दो। देखो ये लकी ड्रॉ होता है, वेरी गुड। हाँ तो देखो, माना ये लॉटरी खुलना भाग्य होता है। आप लोगों को बाबा ने बुलाया, ईश्वर ने बुलाया, तभी आपका। और मैं देखो कितने लोगों का, 10 लोगों का तो किया होगा टिकट, उसमें से दूसरे ही लोग 4 आ गए, 6 टिकट कैंसिल हो गए। तो ऐसा ये लकी ड्रॉ है, जो आप बहुत भाग्यवान हो जो आप इस धरती पर पहुंचे। इसलिए यहाँ पर जितना आप सीखना चाहो वो सीखो। हमारा शांतिवन है वो देखना, ये दुनिया के तो हनीमून पॉइंट है, ये है वो तो दुनिया के देखते रहते, लेकिन ये आध्यात्मिक में ज्यादा आप देखना, क्योंकि आप ज्यादा किस लिए आए, आध्यात्मिक स्टडी करने। आध्यात्मिक का अर्थ है अध्यात्म, आत्मा की उन्नति के लिए। मेरा स्वयं का मुझे अध्ययन करना है। हमने सिर्फ स्कूल की पढ़ाई पढ़ी, आध्यात्मिक ज्ञान हमें नहीं पढ़ाया। स्कूल में आध्यात्मिक पीरियड होता है, उसमें हमको कविताएं, गीत, आरती ये सिखाते, कहानी सिखाते, लेकिन स्व का अध्याय नहीं सिखाया जाता है। अभी मुझे स्व के ऊपर रिसर्च करना है, मुझे स्व को संपूर्ण बनाना है, मुझे स्व को अच्छा बनाना है। अगर मेरी कोई अच्छी बात नहीं है तो मुझे उसको ठीक करने में मेहनत करना है। अभी हम ज्यादा, हमको इतना दिन हम किस पर नजर दें, दूसरा क्या करता है, दूसरे की। इसलिए भगवान की मुरली में आता है, बच्चों की दूर की नजर बहुत पावरफुल है, नजदीक की नजर कमजोर है। तो हमें ईश्वर ने जो यहाँ भेजा, आप यहाँ आए चुने हुए। देखो यहाँ पर भी ये ज्ञान सरोवर में सारे भारत की 400 ही माताओं को बुलाया जाता है। हम ढूंढते हैं कौन सी 4 माताओं को भेजो, हमको 4 ही, एक सेंटर को 4 ही माता मिलती है, कहाँ से ढूंढू, कौन सी ढूंढू। तो आपकी दीदी ने आपको ढूंढ ढूंढ के निकाला और आप यहाँ पहुंचे, तो आप बहुत भाग्यवान हो। और जिन्होंने आपको यहाँ लाया उनको तो शेयर अवश्य मिलेगा ही, लेकिन आप इसका भी क्या करो, लाभ लो। अभी कोई कल जाएंगे, कोई परसों जाएंगे, तो आप ज्यादा से ज्यादा घूमने का स्थान जो है वो आध्यात्मिक का रखना। फिर हमारा पांडव भवन में जाएंगे आप, वहां ब्रह्मा बाबा ने इतनी तपस्या की है जो आज ये इतना विश्व में सेंटर बने। हमारा एक पिक्चर बनाया अभी अभी, द लाइट, किसने देखा है, कहां से आप, हम भी सभी जगह दिखाया, आपके शहर में भी वो पिक्चर आएगा तो आप जरूर देखना, कि प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने महिलाओं को उत्थान करने के लिए कितनी मेहनत किया, और वो आप भाग्यशाली इतना कहते ना, मंथन किया देवताओं ने और उसमें से एक एक रतन निकला, तो भगवान ने भी मंथन किया, ब्रह्मदेव ने, शुभ भोलेनाथ ने, और उसमें से आप रतन निकले। अपने लिए एक ताली बजा दो। आप बहुत लकीस्ट है, आपके 63 जन्म के पुण्य है इसलिए आप यहाँ पहुंचे, लेकिन उस पुण्य को हमेशा आगे बढ़ाइए, हमेशा अपने जीवन की वैल्यू रखो कि मेरा जीवन कोई ऐसा ही नहीं है, मैं एक वैल्यूबल रतन हूँ, तो मुझे गलत काम कभी नहीं करना है, गलत बात मुझे कभी नहीं सोचना, ये अपने जीवन का याद रखना, और सुबह जल्दी 4 बजे उठ के ईश्वर से मिलन मनाना। मैं खुद का अनुभव सुनाती, मेरे को नींद का थोड़ा प्रॉब्लम है, कभी 12 बजे सो जाऊं नींद लगती, कभी 1 बजे लग जाती, तो भी मैं 4 बजे उठूंगी, मना उठूंगी, और जिस दिन कोई प्रॉब्लम आने वाले है ना, उस दिन भगवान मुझे 3:30-3 बजे उठा देता है, कहता उठ जल्दी, भगवान को याद कर, मेरे से शक्ति ले, ताकत ले, वो हमें बहुत मदद करता है। हमारे पास एक पत्र है, खुदा का खत, अगर आपको लिटरेचर में नीचे मिलेगा, वहां होता है, वहां मिलेगा तो जरूर खरीदना। उस लेटर में क्या लिखा है, एक व्यक्ति की कहानी लिखी है कि वो व्यक्ति सुबह उठता है और सभी को गुड मॉर्निंग करता है घर में, भगवान कहते हैं मैं तो बाजू में बैठा है, मैं देख रहा हूं, मेरे को क्यों नहीं गुड मॉर्निंग कर रहा है, मैं तो देखते ही रह गया, मेरे को गुड मॉर्निंग नहीं कर रहा है। फिर वो नाश्ते में आता है, नाश्ते में बैठता है, इसको बुलाता है, उसको बुलाता है, आओ बेटा नाश्ता करो, आओ बहुरानी नाश्ता करो, पत्नी को बुलाता है, सबको बुलाता है, नाश्ता करता है, और भगवान कहते मैं तेरे बाजू में बैठा हूं, तू मुझे नाश्ता करने भी नहीं बुलाता कि आओ भगवान पहले आप खाइए फिर मैं खाऊं, तो आप भगवान को खिलाओ फिर खाओ, ये काम करो। फिर भगवान ने कहा कि तुम ऑफिस में गया, सबको हाय बाय किया, और ऑफिस में मुझे लगा कि मैं देख तेरे बाजू में आया था बैठने को, मेरे को लगा मैं तो तेरे बाजू में ही बैठूंगा, और तुम काम शुरू करने के पहले तो भी मेरे को याद करेगा, घर से निकलते समय भी तू मुझे याद करेगा, तो भी तुम भूल गया काम के बाजू में, तुमको याद था मेरा बॉस आने वाला है इसलिए जल्दी जल्दी घर से निकल पड़ा, मेरे को याद ही नहीं किया। ऑफिस में भी मेरे को लगा लिखना पेन लिया, लिखना शुरू करेगा तो मुझे याद करेगा, तभी भी मुझे याद नहीं किया। फिर मैं टिफिन खाने के लिए बैठे तो टिफिन खाने समय इसको बुलाया उसको बुलाया, थोड़ा उसको खिलाया, मेरे को नहीं भी खिलाया, तभी भी तुम मुझे, मैं तेरे बाजू में ही था, ऐसा दिन भर का वो सुनाता है, और रात को भी मुझे लगा कि तू मेरे को गुड नाइट करेगा तो भी तुमने गुड नाइट नहीं किया। तो कहीं हम भी ऐसा कर तो नहीं रहे, तो आज से ये सबक लेके जाओ, हर कार्य में किसको इन्वॉल्व कीजिए, ईश्वर को, वो 24 घंटा आपके साथ है। इसलिए किसी संत ने कहा, संत को पूछा भगवान कहाँ है, संत ने जवाब दिया भगवान कहाँ, आप जहां सोचो वहां है, आप सोचो उसकी सिर पर मेरे हाथ है आपको अनुभव होगा, आप सोचो मेरा बैकबोन है मेरा भाई है आपको वो अनुभव होगा, आप सोचो मेरे अंगुली पकड़ के चला रहा है आपको अनुभव होगा, कहीं नहीं है, सब जगह है, सिर्फ आप याद करो, आप उसको ध्यान करो, हर पल ध्यान करो, वो मेरे साथ है। इसलिए लास्ट में एक बात बताऊंगी कि प्रेम करो भगवान से, प्रेम करो भगवान से। जीवन के अंदर कई लोग तो आते हैं, दिल तोड़ के जाते हैं, दिल के टुकड़े टुकड़े कर देता है, लेकिन भगवान हमारे सारे दिल के टुकड़ों को एक करके जोड़ देता है। इसलिए अपना दिल किसको दे दो, प्रभु को दे दो। ओम शांति।